नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। मुझे आशा है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन से नई नई बातों को सीख रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अब तक पहाड़ी उपदेश पर विचार किया, लेकिन आज हम अपने इस अध्ययन में पहाड़ी उपदेश के सारांश को देखेंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 5-7 अध्याय के बीच का है और जो पहाड़ी उपदेश के संदर्भ में है। मित्रों, हमने अध्याय 7 में पहाड़ी उपदेश का समापन किया था, पर मुझे लगा कि हमें पीछे जाकर इसके संदर्भ को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी बहुत सी व्याख्या और बातें बहुत लोगों के लिए अनजान और नई है, और बहुत से लोगों का मानना है कि पहाड़ी उपदेश आज के समकालीन समाज में विश्वासियों को जीने का मार्ग बताता है जिसे कलीसिया को दिया गया है। जो भी हो, जब हम पीछे मुड़कर परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से देखते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें 3 महान सिद्धांत दिए हैं जिसके द्वारा वह अधिकार करने और मनुष्यों पर राज्य करने जा रहे हैं। सबसे पहला है मूसा का सिद्धांत जो व्यवस्था है। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्पत्ति के पहले 7 अध्याय में परमेश्वर ने विनाश के बारे में बताया है कि वह सारे मानव जाति को नाश करेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति और उनके परिवार को छोड़कर। यह सब उनके दुर्व्यवहार के कारण है। प्रत्येक विचार निरंतर बुरा ही होता है। उत्पत्ति 6:5 में हम पढ़ते हैं, मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई थी और उसे उनका न्याय करना पड़ा। पूरी पृथ्वी भर में वह सिर्फ एक व्यक्ति और उसके परिवार को ही बचा सका, और इसी से परमेश्वर ने एक नए कार्य को करना आरंभ किया कि वह इसी से एक नए समूह को बनाएंगे और एक व्यक्ति जो लोगों का पिता होगा, जो उसकी गवाही ठहरेगा। वास्तव में वह उन्हें एक भूमि देने जा रहे थे और उन्हें वह एक बड़ी जाति बनाने जा रहे थे, अनगिनत, और वह उन्हें संसार के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहे थे। परमेश्वर उनके द्वारा संसार में पहुंचना चाहते थे। परमेश्वर ने उन्हें मूसा की सिद्धांत या कानून दिए, और यह एक महान बलिदान का सिद्धांत था। निर्गमन की पुस्तक हमें इसका विवरण देती है और यह हृदय की बात को प्रकट करता है। यह होम बलि की वेदी थी जहां पर बलिदानों को चढ़ाया जाता था। वह वेदी यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बताती है, और परमेश्वर ने कोई भी पाप क्षमा उस बलिदान से हटकर नहीं किया, क्योंकि आप देखें कि व्यवस्था मनुष्यों को नहीं बचा पाई। यह सिर्फ मनुष्यों पर प्रकट किया गया कि वह पापी है, और यह न्याय करने का एक नियम बन गया, उधार देने का नियम नहीं। इसलिए पूरे पुराने नियम में होम बलि उधारकर्ता के आने के बारे में बताती है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। मित्रों, यीशु मसीह आए और अपने आप को एक राजा के रूप में पेश किया ताकि पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी हो, परंतु उसके अपनों ने उसे अस्वीकार किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसे एक राजा के रूप में दर्शाता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सभी बातें जो इस सुसमाचार में हैं, उनको सत्य की ज्योति में समझना चाहिए कि वह एक राजा है। मत्ती रचित सुसमाचार में जैसे हमने संकेत दिया था कि राजा का जन्म हुआ है, वो एक राजा के जैसे रहा, एक राजा के जैसे मरा, वह मृतकों में से एक राजा के जैसे जीवित हो उठा, और वह इस पृथ्वी पर पुनः एक राजा के रूप में आ रहा है। मित्रों, जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने एक काम किया जो मूसा की व्यवस्था से भिन्न था, और उन्होंने एक नई व्यवस्था को प्रस्तुत किया जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 5-7 अध्याय में लिखा गया है। इसकी प्रशंसा हम दूसरे सुसमाचारों में भी पाते हैं, परंतु मत्ती रचित सुसमाचार में इसे पूर्ण विस्तार से दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया है, और मुझे भरोसा है कि यह एक संक्षिप्त संस्करण है और इसका प्रमाण यह है कि उसने मूसा की व्यवस्था में से दो नियम लिए और उन्हें उच्च स्तर की व्याख्या पर पहुंचाया। ऐसी व्याख्या कभी भी पुराने नियम में नहीं की गई थी। उदाहरण स्वरूप उसने कहा, यदि आप अपने भाई से क्रोधित हैं तो आप हत्या के दोषी ठहरे। इसके बारे में पुराने नियम में कुछ भी नहीं मिलता है। और उसने यह भी कहा, यदि आप किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं तो आपने अपने हृदय में व्यभिचार कर दिया और आप इसके दोषी हैं। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, मानव जाति के आधे लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने इस नियम या व्यवस्था को तोड़ने का अपराध नहीं किया है। कुछ साल पहले एक खूबसूरत दिखने वाली महिला और जो एक अच्छी मसीही थी, बहुत ही अच्छी बाइबल शिक्षिका थी, ने एक विशेष व्यक्ति से मिलने के बारे में बताया और वह व्यक्ति एक प्रचारक था। उस महिला ने कहा, जब उसने मुझे देखा मैं यह कह सकती थी कि वह क्या कर रहा है। वह मुझे निर्वस्त्र कर रहा था और मैं सोचती हूँ कि वह बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति अपनी आंखों को बंद ही नहीं कर रहा था और उस महिला को निहारे जा रहा था जो उससे मिलने आई थी। पहाड़ी उपदेश के अनुसार वह व्यक्ति व्यभिचार का दोषी है। मित्रों, पहाड़ी उपदेश व्यवस्था को उच्च स्तर पर रखता है। किसी ने पूछा, क्या यही है जिसके द्वारा आज हमें जीना है? जी नहीं, यह उस राज्य के लिए है जो पृथ्वी पर आने वाला है। उस समय संभवतः हमारे पास पहाड़ी उपदेश का पूर्ण संस्करण होगा और यह राज्य की व्यवस्था होगा जिसे मसीह भविष्य में लागू करेंगे। मित्रों, इसमें हमारे लिए एक महान सिद्धांत है, परंतु हमें अलग व्यवस्था दी गई है। मैं और आप जिस युग में जी रहे हैं उसे अनुग्रह का युग कहा गया है या पवित्र आत्मा का युग। यही एक समय है जब परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा उद्धार देते हैं, न कि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा और न ही व्यवस्था का अनुसरण करने के द्वारा। हम जो कुछ करते हैं उसके द्वारा नहीं बचाए जाते हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप तब तक मसीही नहीं हैं जब तक कि आप कुछ पर विश्वास नहीं करते, और वह कुछ है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम इसे पाते हैं। वह सुसमाचार है और वही है जो आपको बचाता या उद्धार देता है। आपके उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का मार्ग आपके जीवन के लिए है और वह मार्ग मूसा की व्यवस्था नहीं है और न ही 10 आज्ञा है। ओह, मैं जानता हूं कि बहुत से कलीसिया या बहुत से संप्रदाय क्या सिखाते हैं। मैं भी उन्हीं संप्रदायों में से एक में से पला और बड़ा हुआ और उसी में शिक्षित हुआ। मेरा सबसे छोटा धर्म प्रश्नोत्तरी पवित्रीकरण के विषय में आने और कैसे परमेश्वर के लिए जीने पर हुआ, जो 10 आज्ञाओं की ओर खींचता है। मान लीजिए कि आपने सभी 10 आज्ञाओं का पालन किया है, जबकि ऐसा नहीं होता है तो वह आपको उद्धार नहीं दे सकता, क्योंकि आपको जो उद्धार दे सकता है वह है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसलिए व्यवस्था आपको उद्धार नहीं दे सकती है। मित्रों, व्यवस्था कभी भी जीवन का मार्ग नहीं है या मसीह जीवन का मार्ग नहीं है। तुरंत कोई पूछता है, क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप इसे तोड़ सकते हैं? वास्तव में यह आपको तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं देती है। इसका केवल एक ही अर्थ है कि हमारे पास जीवन का मार्ग है जो 10 आज्ञा से भी कई गुना अच्छा है। परंतु आप तर्क करेंगे कि अभी तुरंत आपने कहा था कि पहाड़ी उपदेश व्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचाता है ताकि वह हमारे जीवन का मार्ग बने। जी नहीं, वह यह नहीं है। क्या आपने कभी रुककर यह सोचने या विचार करने का प्रयास किया कि यदि आप पहाड़ी उपदेश का पालन कर सकें तो? क्या आप आश्चर्यजनक बयान सुनने के लिए तैयार हैं? पहाड़ी उपदेश ने कलीसिया को किसी और बातों की अपेक्षा अधिक ढोंगी या पाखंडी बनाया है। मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था जो कलीसिया का सदस्य और एक उच्च अधिकारी था, परंतु जो एक लोक प्रसिद्ध नाविक व्यक्ति के समान हो सका, और उसने सोचा कि वह एक मसीही है। जब मैंने पहाड़ी उपदेश के प्रकाश को उसे दिखाया तब मैंने पाया कि उसने जो कुछ भी किया वह सब मत पाने के लिए किया था। उसने इन्हें हो जाने की अनुमति भी दे दी थी। उसने इसका पालन नहीं किया था, न ही वह इसके अनुसार चल सका, और कोई भी व्यक्ति इसके अनुसार नहीं चल सकते हैं। मित्रों, आप देखें कि यह एक तड़क भड़क वाले धर्म का प्रबंध करता है जिसे बहुत से लोग स्वीकार करते हैं। जब उनका हृदय नहीं बदलता है तब मनुष्य के हृदय का बदलना या परिवर्तन जरूरी है। इसके परिणाम स्वरूप उदारवाद सिर्फ राजनीति में ही नहीं मिलती, परंतु धर्म विज्ञान में भी उदारवाद का एक बड़े भाग में गतिविधि है। वे परमेश्वर के पितृत्व और मनुष्य के भाईचारे के बारे में बात करते हैं, परंतु प्रभु यीशु इस सिद्धांत का खंडन करते हैं जब उसने कहा कि यहां तक कि उसके दिनों के धर्म गुरु धार्मिक अगुए तुम अपने पिता शैतान से हो, यूहन्ना 8:44 पद में लिखा है। स्पष्ट रूप से उन दिनों में कुछ लोग थे जो परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सके, तब परमेश्वर का विश्वव्यापी पिता होना लागू नहीं होता है और यह आज भी लागू नहीं होता है। विश्व युद्ध द्वितीय के बाद संयुक्त राज्य ने संसार के साथ भाईचारे के प्रेम को बनाने का प्रयत्न किया। आज बहुत से देशों के द्वारा हम घृणा की दृष्टि में देखे जाते हैं और बाकी हमसे ईर्ष्या करते हैं। हमने अपने देश में शांति स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और आज भी संसार में शांति नहीं है। क्यों मेरे मित्र? यह इसलिए कि आप संसार को पहाड़ी उपदेश के द्वारा नहीं चला सकते हैं। हमारे कुछ राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इस सिद्धांतों को क्रिया रूप में लागू किया, तो क्या यह सिद्धांत ठीक नहीं है? वास्तव में ये अच्छे हैं, परंतु इसमें कुछ गलती है। क्या गलती है? यह मनुष्य का हृदय है जो गलत है। मनुष्य ही एक समस्या है। हमारे एक रेडियो श्रोता मित्र ने यह कहते हुए लिखा, प्रिय भाई मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं ही समस्या हूं। यही परेशानी संसार में है। 10 आज्ञा के साथ कोई समस्या नहीं है। वे परमेश्वर से आई हैं। वे उसकी इच्छा और मन को प्रकट करते हैं और पहाड़ी उपदेश भी परमेश्वर की इच्छा और मन को ही प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से इसमें से कोई भी गलत नहीं है, परंतु कुछ है जो मूलतः मानव जाति के साथ गलत है। प्रिय मित्र, मत्तयि सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुने। वह आपको बताएंगे कि समस्या कहां पर आरंभ होती है। वह कहते हैं, पर जो मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। ये ही वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मित्रों, आपका धर्म हाथ धोने और शरीर धोने वाला हो सकता है और आप किसी भी प्रकार की विधि या उपासना पद्धति से होकर जा सकते हैं, परंतु हृदय एक समस्या है। आज मनुष्य के हृदय की बहुत दयनीय समस्या है और कसरत करना उन्हें सहायता नहीं पहुंचा सकता है। उसे यीशु मसीह की आवश्यकता है, ना कि कसरत करने की। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हृदय को बदल सकते हैं। एक चमत्कार के द्वारा जिसे नए जन्म के नाम से जाना जाता है, उसने एक सुशील आदरणीय फरीसी से भी कहा, जिसका नाम निकोदिमुस था, कि उसे नए जन्म की आवश्यकता है। यद्यपि नए जन्म के कथन को गलत समझकर आज हमारे दिनों में इसका दुरुपयोग किया जाता है, फिर भी यह एक चमत्कारिक और आश्चर्यजनक सत्य है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे और आपको नए जन्म की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर में पुराना स्वभाव है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे हृदय से बाहर क्या निकलता है, तो वह जोई डुआक्स के हृदय के बारे में नहीं कह रहे हैं, यद्यपि उसका हृदय भी इसमें शामिल है। वह आपके हृदय और मेरे हृदय के बारे में बोल रहे हैं। आप देखें कि हृदय ही एक समस्या है। इस सत्य को पौलुस प्रेरित ने बड़ी अच्छी तरह से विस्तृत रूप में रखा है। उसने कहा, अब शरीर के काम स्पष्ट हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम। गलतियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19-21 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, आज हम परिस्थिति पर आधारित नीति शास्त्र के दिनों में रह रहे हैं। आज हम घोर अनैतिकता में जी रहे हैं। आज यहूदी मसीहियों के नीति शास्त्र को मानो दूर फेंक दिया गया है और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। मैंने एक महाविद्यालय के प्राध्यापक का टेलीविजन पर लिया गया साक्षात्कार या मुलाकात सुना। उससे प्रश्न पूछा गया, हमारे दिनों में क्या सही है? उसका उत्तर था, कोई भी बात यदि वो आपको खुश करती या अच्छा महसूस कराती है तो वो सही है। इसके अनुसार यदि आपको अपने माता पिता की हत्या करने से खुशी मिलती है तो यह बिल्कुल सही है। मित्रों, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमारे पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए दी थी, परंतु वे पुराने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि जिस जाति को परमेश्वर ने यह आज्ञाएं दी थी वे उससे अलग अर्थात दूर हो गए थे, वे परमेश्वर से दूर चले गए थे। मित्रों, मनुष्य फिर भी कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सका। पौलुस अपने पत्र में बार बार इसे रखते हैं। अब मनुष्य को कैसे रहना या जीना है, उसे अपने प्रयास के द्वारा नहीं जीना है, क्योंकि वह इसे सफल नहीं बना सकता है। गलतियों के पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पवित्र वचन कहता है, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। मित्रों, कोई भी व्यवस्था नहीं है जो इसे उत्पन्न कर सकती है। स्वाभाविक तौर से आपके अंदर और मेरे अंदर प्रेम नहीं है। मैं यहाँ पर शारीरिक प्रेम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, परंतु दूसरों के प्रति वास्तविक चिंता और परमेश्वर के लिए एक सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूँ। उस प्रकार का प्रेम स्वाभाविक तौर पर नहीं आता है। एक प्रचलित गीत का शीर्षक इस प्रकार से हुआ करता था, स्वाभाविक तौर से जो आता है उसे करो। ठीक है, परंतु जब मनुष्य जो स्वाभाविक तौर से आता है उसे करता है, तो वह हमारे समकालीन सभ्यता को उत्पन्न करता है, जो जितनी व्यवस्था रहित हो सकती है उतनी हिंसक है। बहुत से उच्च स्तरीय गंभीर व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न है कि क्या हमारा देश बचेगा या नहीं। हम नहीं बचा सकते मेरे मित्र। मनुष्य के पुराने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण और पुनर्स्थापन के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कैसे इस अद्भुत फलों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रेम, नम्रता, दीनता आदि से है? यह सच है कि आप अपने प्रयास से इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आप पहाड़ी उपदेश में पीछे जाएं, जहां पर यह कहा गया है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 5 पद में। इसके बारे में आप सम्यवादी से बातें करें, क्या वे नम्र होकर संसार में उत्तराधिकारी बन रहे हैं? हमें एक देश से पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि नम्र लोग पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं बन रहे हैं, लेकिन नम्र लोग पृथ्वी पर उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। परंतु जब तक राजा नहीं आता है, वह एक है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, जो पृथ्वी पर चला फिरा, वह बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आने वाला है, और वह अधार्मिकता को इस पृथ्वी से दूर करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। जब वह ऐसा करता है, तब पहाड़ी उपदेश की व्यवस्था इस राज्य का नियम होगा। परंतु आज हमें कैसे जीना है? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। वही है जो हमारे जीवन में या हमारे जीवन के अंदर इन अद्भुत फलों को उत्पन्न करता है, प्रेम, आनंद और शांति। आपके अपने हृदय में शांति के विषय में क्या है? क्या परमेश्वर के साथ आप ठीक हैं? केवल परमेश्वर का आत्मा ही वह आपको आनंद और शांति दे सकता है। मेरे मित्र, क्या आप परमेश्वर का वास्तविक आनंद जानते हैं या उसका अर्थ समझते हैं? तब इस नम्रता के बारे में आपका क्या कहना है? आप और मैं नम्र नहीं बन सकते। हमारा हृदय घमंडी है। मेरे पास एक अच्छी बात है कि लोग मेरा पीठ थपथपाते हैं और मैं आनंदित होता हूं, परंतु अब आप मुझसे यह न कहें कि आपको यह पसंद नहीं है, क्योंकि आप भी इसे पसंद करते हैं। हमें घमंड है कि पुराना स्वभाव स्वयं से प्रकट हो रहा है, परंतु आत्मा का फल नम्रता है। मेरी पूरी सेवकाई में मैं परमेश्वर से नम्रता को ही मांगता रहा कि प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे विनम्र बना, जिस प्रकार का मसीह मुझे होना चाहिए वैसा ही मुझे बना। मैं अपने से नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, यह जीने का एक नया तरीका है। यह मूसा की व्यवस्था नहीं है और न ही यह पहाड़ी उपदेश है, यह नया है। परमेश्वर ने हमें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है जो स्वर्गीय है। यह आत्मिक आशीषें हैं जिसे उसने हमें दी हैं, और अब हमें इसी पृथ्वी पर नम्रता के साथ, मन और हृदय की विनम्रता के साथ और परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ के द्वारा चलना है। और आज हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है, जो हमें परमेश्वर के लिए जीने में सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेगा। यह हमें परमेश्वर की सेवा करने में सामर्थ प्रदान करेगा। यह एक उच्च योजना है जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। मित्रों, यह मेरी आशा है कि अब आप लोग पहाड़ी उपदेश को इसके सही संदर्भ में देख रहे हैं। अब हम उस पहाड़ से नीचे उतरने के लिए तैयार हैं, जहां उसने नीति विषयक बातों को प्रतिपादित किया, और हम देखेंगे कि जब वह इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए आएंगे, तब वह इस व्यवस्था को लागू और सक्रिय करने की क्षमता रखेंगे। प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है और आज के अध्ययन के विषय की भी समाप्ति होती है। इस प्रकार से पहाड़ी उपदेश के सारांश का अध्ययन खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पहाड़ी उपदेश की व्याख्या परमेश्वर के इस पृथ्वी पर शासन के समय लागू होगी, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से इसका पालन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सब मनुष्यों को नए जन्म की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पुराने स्वभाव से निकलकर एक नए स्वभाव को प्राप्त करें और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन आत्मा के फल को अपने जीवन में देख सकें, जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। क्या आप पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नम्र बने, क्योंकि नम्र व्यक्ति ही इसका उत्तराधिकारी बन सकता है। मित्रों, आज प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके अंदर भी आत्मा के फल उत्पन्न होने पाए और आप परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु आप सबों को अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि आप सब एक नए मनुष्यत्व को पा सकें और उसके आशीषों को जीवन में अनुभव कर सकें, ताकि आपका जीवन प्रभु की संगति और उसके प्रेम और उसके भय में बढ़े और आप अनंत जीवन में शामिल हो सके। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने।
Thank you.
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, गालो ये सुना बन जाएंगे काम। तो गालो ये सुना बन जाएंगे काम। बोल यीशु मसीह की जय, काम न आई इस दुनिया में सब हर जाई। दुनिया किसी के काम न आई, इस दुनिया में सब हर जाई।
दुनिया किसी के काम न आई, इस दुनिया सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम आए, इस दुनिया में सब हर जाए। वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा न साथ, वो पकड़े जो मुसीबत कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ